एक मीटिंग जिसमें वो हमेशा गंभीर रहता था, आज उसमें उसकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। फरीद खान अभी नहीं जानते थे, मगर आने वाला वक्त उन्हें सब कुछ दिखाएगा। एक मज़लूम लड़की पर लगाया गया इल्ज़ाम किस तरह इल्ज़ाम लगाने वालों की ही ज़िंदगी हिला देता है। अल्लाह सबके हिसाब लेता है। रेहान ऑफिस के मीटिंग रूम से बाहर निकलकर अपने केबिन में आ गया था। उसने अपनी टाई ढीली की और कुर्सी पर बैठ गया। वो बहुत परेशान था क्योंकि नूर उसके हाथ से निकल रही थी। उसने कुछ और ही सोचा था, मगर हो कुछ और गया था। तभी उसके डैड फरीद खान उसके ऑफिस में आए थे। वो देख चुके थे कि मीटिंग रूम में रेहान कितना अपसेट था। अगर तुम्हें परेशानी है या गुस्सा है तो तुम ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर नहीं उतार सकते, फरीद खान ने कहा। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है तो मुझ पर निकालो। आप पर किस बात का गुस्सा डैड, रेहान ने थोड़ा हैरान होकर पूछा था। नूर को तुम लोगों की लाइफ में मैं लेकर आया था। जो भी आज घर में हुआ वो मेरी वजह से हुआ, उसका जिम्मेदार मैं हूं, फरीद खान ने कहा। उसकी नज़र में उसका बेटा इनोसेंट था। कसूर तो उस गरीब लड़की का था। वो ये नहीं जानता था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। वो आपके दोस्त की बेटी थी, आपने तो इसलिए उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, रेहान कहने लगा। नूर ने जो भी किया उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ना माने। तो और किसकी गलती है, फरीद खान ने कहा। उसे खुद पर पछतावा था कि वो गलत लड़की को घर लेकर आया। आपकी गलती नहीं है डैड, रेहान ने फिर कहा था। उन एम्प्लॉयज़ की गलती तो बिल्कुल भी नहीं है जिन पर तुम गुस्सा होकर आए हो। वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तुम उनके साथ ऐसा भी नहीं कर सकते, फरीद खान ने साफ साफ कहा था। रेहान परेशान था। वो अपनी चेयर पर बैठ गया था, सिर पर हाथ रखकर। उसकी परेशानी नूर थी, जिसे वो हर हाल में पाना चाहता था, मगर फरीद खान को लग रहा था कि उसका बेटा घर में जो कुछ हुआ उसी की वजह से परेशान है और ऑफिस में ध्यान नहीं दे रहा। पता है डैड, नूर ने मुझ पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया है। ये नॉर्मल नहीं है, इतनी बड़ी बात है, फरीद खान ने जब उसे नॉर्मल होने को कहा तो उसके जवाब में रेहान बोला। वो पागल थी, दफा करो उसे, फरीद खान ने प्यार से कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने उसकी बात सच्ची नहीं मानी, तो फिर क्यों सोचते हो इतना, किस बात का बोझ लिए बैठे हो, रेहान कुछ पल चुप रहा फिर बोला। किसी और की तो नहीं, मगर सादिया की नज़रें मुझ पर सवाल करती हैं, जैसे पूछ रही हूँ कि मैंने जो अब तक नूर के लिए किया क्या मैं उसे सहारा दे रहा था या उसका फ़ायदा उठाने के लिए कर रहा था। उसने गहरी सांस ली। आप समझेंगे, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगा, मैं एकदम से ठीक नहीं हो सकता, फिर उसकी आवाज़ में बेचैनी आ गई। डैड, मेरा बस चले तो मैं उसके पास जाऊँ और पूछूँ उसने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया, क्या मिला उसे मुझे यूँ बदनाम करके, फरीद खान ने सीधे कहा। तो पूछ लो, अगर पूछने से सुकून मिलता है तो पूछ लेना चाहिए। वो चाहता था कि उसका बेटा ठीक हो जाए, इसलिए उसने ऐसा कहा था, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसके बेटे को अपने कैरेक्टर पर उंगली उठने से उतनी परेशानी नहीं थी जितनी इस बात से कि नूर उसके हाथ से निकल गई थी। मैं तो कहता हूँ कि उसके ख़ानदान में जाकर उससे जवाब मांगो, तुम पर उंगली उठाई है, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है, जब तुम जाकर जवाब मांगोगे तब उसे पता चलेगा कि किसी पर यूँ इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, फरीद खान अपने बेटे को उकसा रहा था सिर्फ उसे शांत करने के लिए। इस बात से अनजान कि वो आग को हवा दे रहा है और ये आग किसी और का तो पता नहीं, मगर उसका अपना घर जरूर जला देगी, शायद जो फरीद खान और नासिर खान ने अपने भाई के बच्चों फैजान और सादिया के साथ किया था, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली थी, उसी का हिसाब लेने के लिए नूर को भेजा गया था, और अब वही नूर इन सब की बर्बादी का कारण बनेगी, क्योंकि अगर किसी मजलूम लड़की को दबाया जाएगा तो वो बदला लेने जरूर लौटेगी। उधर अरमान दिल्ली पहुंच चुका था, उसकी फ्लाइट लैंड कर चुकी थी, मगर उसका दिल अभी भी वहीं अटका हुआ था। वो परेशान था, बार बार नूर का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था, उसे लग रहा था कि नूर उसे धोखा देकर चली गई। मोबाइल बार बार बज रहा था, माहिरा का फ़ोन लगातार आ रहा था, मगर उसने एक बार भी नहीं उठाया, क्योंकि उसने अपने ही प्यार पर यकीन नहीं किया था, और जो प्यार यकीन ना कर सके ऐसा प्यार होना ही नहीं चाहिए। वक्त उसे दिखाएगा कि नूर कैसी लड़की थी, और जब सच सामने आएगा तब उसके पास सिवाय पछताने की कुछ नहीं होगा। वो देखेगा कि नूर के पास कोई है जो उस पर यकीन करता है, उसके लिए खड़ा रहता है, क्योंकि नूर सच में उसी इंसान को डिजर्व करती है जो उसे समझ सके और हर हाल में उसका साथ दे सके। उधर दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच अरमान खड़ा था, मगर उसका मन कहीं और था। उसकी फ्लाइट लैंड हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ जैसे बिखरा हुआ था। नूर का ख्याल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था, माहिरा का कॉल लगातार आ रहा था, मगर उसने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। उसने अपनी आँखें बंद की और एक कड़वी सच्चाई उसके अंदर गूंज गई। जिस प्यार में यकीन ना हो वो प्यार प्यार नहीं होता। अरमान ने नूर पर भरोसा नहीं किया था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त अब उसे सच्चाई दिखाएगा कि नूर कैसी लड़की थी, और जब वो सच सामने आएगा तब उसके पास सिर्फ पछतावा होगा, क्योंकि उस वक्त नूर के पास कोई और होगा, कोई ऐसा जो उस पर यकीन करेगा, उसके लिए खड़ा रहेगा, और वही इंसान असल में नूर के प्यार के लायक होगा। अरमान का फोन अब भी लगातार बज रहा था, मगर उसने जैसे ठान लिया था अब किसी से बात नहीं करनी। इधर उसके घर के हाल में माहौल बिल्कुल अलग था। जुबैदा बेगम ने अपना बैग तैयार कर लिया था, उनके चेहरे पर साफ बेचैनी थी। मैं उसके पीछे जा रही हूँ, उन्होंने ठोस लहजे में कहा। माम आप क्यों जा रही हैं, माहिरा ने हैरानी से पूछा। वो सुबह गया है, शाम तक काम करके वापस आ जाएगा। नहीं, जुबैदा बेगम ने तुरंत जवाब दिया, जिस तरह वो लड़की गई है ना, वो जरूर अरमान से संपर्क करेगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा फिर उसके बहकावे में आए। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मुझे अपने बेटे की फिक्र है और मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन वो इस माहौल से दूर रहे। माहिरा ने हल्की सी सांस ली, जैसे खुद को समझा रही हो। आपकी मर्जी है माम, लेकिन नूर अरमान को फोन नहीं करेगी, और सच कहूँ तो अरमान भी उसके लिए इतना सीरियस नहीं था। अगर होता तो उसे यूं छोड़कर कभी नहीं जाता। सुबैदा बेगम ने उसकी बात सुनी मगर मानी नहीं। तभी रेहाना बेगम ने बीच में कहा, कोई बात नहीं, अगर कुछ दिन अरमान बाहर रहेगा तो शायद उसका दिमाग शांत हो जाएगा। जुबैदा का जाना गलत नहीं है, अब फैसला हो चुका था। उधर सादिया अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं मगर नजरें कहीं खोई हुई। वो सब कुछ जानती थी, हर सच, हर झूठ, हर चाल। जो बातें बाहर लोगों के सामने थीं वो अलग थीं, और जो असलियत थी वो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता थी। नूर का कोई कसूर नहीं है, उसने धीरे से खुद से कहा। वो रेहान की मोहब्बत में चुप रह गई थी और उसे इल्ज़ाम सिर्फ उस लड़की पर लगा था जो बिल्कुल बेकसूर थी। जो सादिया ने किया था उसे भी तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। जो गलत करते हैं वो कभी सुख नहीं पाते, तड़पते हैं वो तमाम उम्र। तो फिर सादिया की किस्मत में चैन कहाँ से आएगा? उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे पूरा यकीन था रेहान इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, वो जरूर जाएगा, उसने बुत बताया, नूर के पास जवाब लेने नहीं बल्कि उसे वापस लाने के लिए। कमरे में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान पल रहा था, क्योंकि अब सिर्फ रिश्तों की नहीं सच और बदले की लड़ाई शुरू होने वाली थी।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। आपके कमेंट हमें हौसला देते हैं।